رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اسلام کی چار بنیادیں، اس میں سے ہم عقیدے کے ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں اور آج ہم اس میں ایمان بالآخرہ کو دیکھیں گے. ایمان بالآخرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جس طرح ہم اسلام کی بنیادیں پڑھ رہے ہیں نا اس وقت، اسی طرح ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بڑی مضبوط بنیاد ایمان بالآخرہ ہے. دوسری بات، یہ خود سے جملے چھوٹے چھوٹے ضرور لکھا کریں، یہ بات میں پھر آپ کی بھی زبان پہ آ جائیں گے کیونکہ یہ کتابوں میں نہیں ملتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بالآخرہ وہ تیسرا پرچہ ہے جو 13 سال تک مکہ میں مسلمانوں کو پڑھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے بعد جو معاشرہ تھا وہاں کا، ہر خرابی اس میں دکھتی تھی، بجائے اس کے کہ خرابیوں کو اور برائیوں کو ڈائریکٹ ہٹ کیا جائے، شراب نہ پیو، سود چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، یہ نہیں کیا اسلام نے. اور آج آپ بھی اپنے لیے نوٹ کیا کریں، تبلیغ چاہے آپ اپنے بچوں کو کرتے ہیں، چاہے آپ انسانوں کو، دوسرے لوگوں کو کریں گے، تبلیغ کی ترتیب وہی رہنی چاہیے جو اللہ نے اختیار کی تھی. یہ جملہ اگر آپ لکھ لیں تو میرا یقین ہے کہ آپ کی بات کہنے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، پھر اثر اللہ ڈال دے گا. اور وہ کیا ہے کہ جس کی خرابیاں، جس کی برائیاں دور کرانی ہوں، اس کا ایمان بالآخرہ اجاگر کر دیں، اس کا تعلق باللہ مضبوط کر دیں اور اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں. یہ جو ہم سر کھپائی کرتے ہیں نا، میں تو اس کو سر کھپائی کروں گی، سب سے ہی کرتے ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر، گھر کے باہر اندر، ساتھیوں سے، جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، ہم ہر لمحے پریشان ہی رہتے ہیں نا. اب ایون اگر آپ دیکھیے، ایک مینیجر ہے تو اس کو 10 لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ کتنا کو دماغ کھپائے گا، کس کس پہ نظر رکھے گا، کیا اس کو پوچھے گا، کتنوں کا آنے کا پوچھے گا، جانے کا پوچھے گا، ورک شیٹ چیک کرے گا نہیں کرے گا، یہ اندر جا کے چوریاں تو نہیں کرتے، ہیرا پھیریاں تو نہیں کرتے، یہ مالی خیانتوں میں نہیں ہے، نہیں کر سکتا کوئی. یہ وہی باریک بین ذات ہے، اللطیف الخبیر السمیع، وہ کر سکتا ہے. بندے کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی بندے کو 100% وہ دیکھ سکے، اس کے حالات کو جان سکے. تو اس کے لیے پھر آسان سا حل ہے کہ اس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس دے دو. میں نے تو دیکھا ہے کہ اس ایک سنت پہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی سے غم ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہر وقت ہم جلتے ہیں، ہم کڑتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے جواب دے ہی لیتے ہیں، پھر ہم کبھی لوگوں کو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، نہیں. بس آپ ان کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى اور شَرًّا يَرَى. جو چھوٹے سے چھوٹا عمل تم کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، کل اس کو دیکھ لو گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بالآخرت کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا اس جملے کو. میں جو کچھ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اور آخرت میں مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ ایمان بالآخرت کا تصور ہے. اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ میں جو عمل کرتی ہوں میں اللہ کی خاطر کرتی ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، آپ کوئی کام کس کی خاطر کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ کو بعد میں اس کام کے کرنے کے کس کو جواب دینا ہے، رپورٹنگ کس کو دینی ہے. آپ اس کو دنیا داری سے پہلے سمجھیے، ہر ایک گھر سے مرد صبح صبح اٹھ کے جاتے ہی ہیں نا، کوئی جاب پہ جاتا ہے، کوئی آفس میں جائے گا، کوئی دفتر میں جائے گا، کوئی دکان کھولے گا، سب کیوں نکلتے ہیں؟ ایک بات، فرسٹ تھنگ، ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ لینے کے لیے، دوسرا کہتا ہے کہ میں وقت پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا باس جو ہے وہ خوش ہو جائے، تیسرا کہتا ہے میں وقت سے پہلے اس لیے نکل رہا ہوں کہ زیادہ گاہک میری طرف آئیں. ایون سب کے مال کمانے کے لیے نکلنے کی بھی آگے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوتی ہے. ایک شخص سے وہ کہتا ہے میں ارلی مارننگ صبح اٹھ کے اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ چاروں پانچوں سوچوں کا فرق ان کے اس عمل میں جھلکے گا. ایک نوکر ہے، وہ مال ملازم کی خوشی کے لیے جا رہا ہے، ایک ملازم ہے اس کو خوف ہے جلدی نہ گیا تو میری جاب چلی جائے گی، ایک تیسرا، ایک چوتھا. ان میں سے سب سے خوبصورت وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، میں نے اس کو دیانتداری سے نبھانا ہے. میں جھوٹ بول دوں، میں عذر رکھ دوں، میں دیر ہو گیا، میں ٹریفک میں پھنس گیا، میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، مالک بیچارے نے کیا کہنا ہے، بٹ میرا یہ عمل اللہ کے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ عمل اللہ کی خاطر ہوگا. ہمارے ذہن میں عموماً کیا آتا ہے، اللہ کی خاطر صرف قرآن پڑھایا جا سکتا ہے، اللہ کی خاطر مسجد میں جا کے جماعت کرائی جا سکتی ہے، اللہ کی خاطر کسی مسجد میں جا کر چندہ دیا جا سکتا ہے. ایک ایمان والے کی پوری زندگی اللہ کی خاطر ہو سکتی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ دنیا کا کوئی کام کریں، آپ ذاتی زندگی کے معاملات میں ہوں، خاندانی معاملات میں ہوں، گروہی معاملات میں ہوں، آپ اپنے لیے یہ کرائیٹیرین رکھ لیں آج سے. پہلے پتا تھا آپ کو، لیکن یہ آپ کی سیلف گرومنگ ہے، یہ آپ آج کل اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ڈائگنوز کرا رہے ہیں. جو کام کرنے لگے بولیں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. کھانا صبح بنایا، ناشتہ بنایا، چائے بنائی، گھر صاف کیا، اللہ کے لیے کیا. شوہر کو کھانا اس لیے دیا، اللہ نے یہ نعمت دی، شوہر یہ کھانا کھا کر کوئی نیکی کریں گے، اس نیکی میں میرا حصہ ہوگا، یہ اللہ کے لیے. ان بچوں کے لیے کھانا بنایا، ان کو کھلایا تاکہ ان کو طاقت ملے اور یہ اچھے کام کریں اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. میں سمجھتی ہوں کہ صرف اس ایک جملے پہ غور کرنے سے نا، کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے. اچھا، جب آپ کسی چیز کو اللہ کے لیے کریں گے نا، تو اس کے کئی اثرات مرتب ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، یہ آپ 1, 2, 3 کر کے خود لکھیں، ورنہ یہ باتیں آپ کو بھول جائیں گی. جب کوئی کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نمبر ایک، تو اس کام میں کوالٹی آتی ہے. بھی سیدھی سی بات ہے، آپ نے کسی ملینیرین کو کچھ چیز پیش کرنی ہے، یا کسی 5-10 ہزار پہ تنخواہ والے کسی شخص کو کوئی چیز دینی ہے، کوالٹی کا فرق ہوتا ہے، اور کوئی بری بات نہیں ہے. ایک جو ہے وہ 50 ہزار سے نیچے کی چیز ہی نہیں پہنتا، دوسرا وہ کہتا ہے 500 کی بھی ٹھیک ہے. تو آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس وقت ضرور سوچتے ہیں کہ یہ خود کیا پہنتا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے، اس کی چوائس کیا ہے. پتا چلے میں نے اس کو کچھ دیا، اس نے اٹھا کے ماسی کو دے دیا، ہے نا. تو پہلی چیز، جب آپ کوئی کام، پھر وہی میں دہرا دیتی ہوں کہ آپ کا اس میں گھر داری کا کام بھی آتا ہے، اس میں بچوں کو پالنا بھی آتا ہے، اور اس میں دین کے کام بھی آتے ہیں. وہ تو آتے ہی ہیں بدرجہ اتم، یعنی آپ کا اس وقت علم لینے کے لیے آنا، میرا علم دینے کی خاطر سے نکلنا، کسی کا اسکول کو کھولنا، کسی کا اس جگہ کو صاف کرنا، یہ سارے عمل اس میں ہیں. لیکن اس میں ہمارے گھر والوں کو ہم کس حال میں چھوڑا ہے وہ بھی آتا ہے. جب ہم کوئی کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو دی بیسٹ کرتے ہیں. آج سے اپنے آپ پر ایک چیک رکھیے، جب میرے کسی کام میں دی بیسٹ سے صرف بیٹر آتا ہے نا، تو مان لیں کہ میرا ایمان باللہ کمزور ہے. فرسٹ تھنگ، اللہ پر ایمان میں کمی ہے، اللہ سے محبت میں کمی ہو گئی ہے، یا اللہ کے خوف میں کمی ہو گئی ہے. تو کوالٹی کانشیس آپ نمبر ون لکھے، دی بیسٹ سے کم پہ راضی کوئی نہیں ہونا. اور آپ دیکھیں، یہی وہ سوچ ہے جو صحابہ کرام کو بستر مرگ تک بے چین رکھتی تھی. کر تو رہے ہیں، قبول ہو رہا کہ نہیں. یہی وہ سوچ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بنانے کے بعد کیا دعا مانگنے پہ مجبور کیا، کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہی وہ سوچ ہے کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبولیت ہے کہ نہیں. اور یہی ہے وہ سوچ جس کا ذکر سورت مومنون میں آتا ہے کہ من خشیت ربہم مشفقون. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ چور، یہ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں کہ گناہ کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ چوریاں اور ڈاکے ڈالنے والے، غلط کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ نیکیاں کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے لیے کام کرنے والے، کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیں، کبھی کسی بڑے انسان سے واسطہ پڑا ہو نا، آخری وقت تک دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پسند آ جائے، قبول ہو جائے، کھانا پسند آ جائے، یہ جو ان کے لیے اہتمام کیا وہ آ جائے۔ لوگ کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں اور لرزتے بھی ہیں، حالانکہ ہم سب ایک جیسے انسان ہیں، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن فطری بات ہے جس سے انسان مرعوب ہوتا ہے، چاہے علمی طور پہ مرعوب ہو، چاہے مالی طور پہ ہو، خاندانی طور پہ ہو، انسان اس سے دبتا ہے۔ تو دی بیسٹ سے کم نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد تو ہمیں کسی محاسبے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بلا کر دکھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ نے یہ کام کیا کیا۔ کیا اس کے بعد جو باقی دیکھیں دنیا داری کے کام ہوتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا سیٹ اپ کہتے ہیں، مثلا ایک آفس ہے، اس میں ایک امپلائی ہے، اس کے لیے رولز بنے ہوئے ہیں، ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں، اس کو وارننگز ملتی ہیں، اس کی جاب کا اس کو جھٹکا لگا رہتا ہے، سچ بتائیں اس سوچ کے بعد کیا اس پیپر ورک کی کوئی اہمیت رہتی ہے؟ کوئی نہیں، وہ کہے گا نہیں تو نہ صحیح، میں اپنے رب کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ فرسٹ تھنگ یہ لکھ لیجئے، آپ اس کا کوڈ ورڈ رکھ لیں، کوالٹی کانشیس ہو جاتا ہے بندہ، اور یہی خوف تقویٰ میں ڈھلتا ہے، یاد رکھیے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے ہر عمل کو چھوٹے سے چھوٹا کر کے دکھاتی ہے۔ کر کیا لیا میں نے، ابھی تو وہ ذات بڑی ہے جس کے لیے کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز بہت بڑی چیز ہے واللہ ہی، اگر ہم یہ کوڈ ورڈ اپنی پانچ انگلیوں پہ یاد رکھ گئے، آج کے بعد ہمیں کسی میٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی محاسب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا اپنا نفس بڑا محاسب ہے، کیونکہ حاسبک قبل ان تحاسبوا۔ اور دوسری چیز، جب کوئی عمل صرف اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے تو اس میں سیلف موٹیویشن ہوتی ہے۔ سیلف موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ سیلف سیلف ہے، موٹیویشن حرکت دینا۔ ایسے بندے کو باہر کے پش اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی موٹیویٹ کرے تو کام کرنا، کوئی نہ کرے تو نہیں کرنا۔ ایمان سے بڑا موٹیویٹر کوئی نہیں، میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے ایمان پہ بات کرتے ہوئے، ایمان آپ کا کیٹلسٹ ہے۔ سائنس جنہوں نے پڑھی ان کو کیٹلسٹ کا کام پتا ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھے، میں اپنی زبان میں سمجھاؤں، کہ کبھی آپ نے لاری کو دوپٹہ رنگتے دیکھا ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے۔ ایک ہوتا ہے وہ رنگ ڈالتا ہے، کپڑا پانی ڈالا، اس کو پکاتا ہے کچھ دیر، ایک وہ وائٹ سا پاؤڈر سا ہوتا ہے۔ بھائی یہ کیوں ڈالا؟ کہتے ہیں بھائی یہ ڈالنے سے رنگ جلدی آئے گا۔ کیٹلسٹ کا مطلب کسی عمل کو تیز کرنا۔ سائنس میں جب ایسڈ بنتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو عام حالات میں اس کا پروسیس لمبا ہوتا ہے، وہ کیٹلسٹ ڈال دیتے ہیں کوئی ایسا کہ جس کا ایک دم کام ہو جاتا ہے، کم بچتا ہے۔ تو اللہ کی خاطر جب کام آپ کریں گے تو اس کے اندر آپ کے اندر سے سیلف موٹیویشن ہوگی۔ کوئی دوسرا آپ کو بلائے نہ بلائے، دوسرا آپ کو انفارم کرے نہ کرے، دوسرا آپ کو کچھ کہے نہ کہے، آپ خود ہی اٹھ پڑتے ہیں، اندر کی فورس ہے۔ جیسے آپ، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، مثال اچھی نہیں ہے لیکن بات بڑی سیدھی ہے۔ مجھے اور آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ اٹھو واش روم تو یوز کر لو؟ یہ جو صبح بستر سے اٹھتے ہی ہم باتھ روم کی طرف بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ سیلف موٹیویشن ہوتا ہے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں واش روم کی ضرورت ہے، آپ کو یورین پاس کرنا ہے، آپ کو دنیا کی کوئی چیز اس وقت اچھی نہیں لگے گی، آپ کہیں گے واش روم ہے۔ اس کو سیلف موٹیویشن کہتے ہیں۔ یا بھوک لگی ہو تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ اٹھو کچھ کھا لو، آپ کا اندر مانگ رہے ہیں، آپ اٹھ اٹھ کے جھانک رہے ہیں کوئی ہے چیز جو منہ میں ڈال لوں، یہ سیلف موٹیویشن ہے۔ جب کوئی کام، چاہے دین کا، چاہے دنیا کا، علم کا، اجتماعیت کا، انفرادی نیکیوں کا کام آپ خود کریں گے اللہ کے لیے، آپ خود ہی اٹھ جائیں گے۔ تیسری چیز، جب کوئی کام صرف اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے نا، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، تو نتائج سے اس کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ مطلب آپ کوئی کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں، مثلاً چلے ہم گھریلو مثال ہی دیتے ہیں، پہلے آپ نے بڑے ارتفاق سے ناشتے کا ٹیبل لگایا، آپ نے اس میں جو آپ کر سکتے تھے دی بیسٹ طریقے سے اس میں ناشتے کی چیزیں رکھی، آپ اپنے شوہر کے پاس لے گئے کہ کھانا کھا لیجئے، یہ کر لیجئے۔ اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ آپ کے اس اہتمام سے خوش نہ ہو، آپ نے جتنے پریم سے پیار سے کوئی چیز بنائی وہ کہتے ہیں میں نے کھانی بھی نہیں ہے، اچھا انہوں نے نہیں کھائی، ایک صورت کیا ہوگی؟ آپ کو غصہ آئے گا، یہ کیا ہے، میں نے محنت کی، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جب آپ یہ صرف اللہ کے لیے کریں گے نا، تو آپ کہیں گے مجھے تو مل گیا اجر، آپ کھا لیتے تو آپ کو فائدہ ہوتا، مجھے تو اس کا اجر مل گیا۔ یعنی اگر ہسبینڈ کھا کر تعریف کریں، گنگائیں آپ کے، یا تنقید کریں، आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन करें मैं आपको एक जुमला बोलने लगी हूँ, बड़े शौर से बोलूंगी और मैं अपने दिल को सामने रख के बोलूंगी कि जब आप कोई काम अल्लाह की खातिर करते हैं ना, तो दुनिया वाले आपको पुतले लगते हैं, मट्टी के मादू लगते हैं। आपकी नजर में वो इतने छोटे हो जाते हैं, आप कहते हैं एक छोटा सा मट्टी का पुतला मेरी तारीफ कर रहा कर ले, और ये मट्टी का पुतला मेरे जज्बात को हर्ट कर रहा कर ले, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड। यानी ये चौथा असर बता रही हूं कि जब कोई काम अल्लाह की खातिर करते हैं ना, तो बंदे इतने छोटे लगते हैं, इतने छोटे लगते हैं, आप उनकी परवाह भी नहीं रहती, आप उनकी किसी बात को खातिर में नहीं लाते। क्यों? आपकी नजरें बहुत ऊपर है। मैं इसको छोटी सी मिसाल से आपको समझाती हूं। देखिए कि अल्लाह ताला की जात आसमानों पर, हमारा ईमान है, ये जो हम पीछे भी बात हुई है ना कि अल्लाह हर जगह, तो इल्म और समात और बसारत और हमारी मदद के साथ है, अदरवाइज वजूद के साथ ऊपर है। अब मैं जब ऊपर देखूंगी तो आप सब मेरी नजरों से हट जाएंगे ना। अब मैं देख रही हूं, आप मुझे दिख रहे हैं, 4, 6, 8, 10 चेहरे इधर उधर दिखेंगे ना मुझे जब मैं सीधा देखूंगी, और थोड़ा सा ऊपर देखूंगी तो मुझे शक्लें नहीं दिख रही लेकिन आपकी थोड़ी सी मुझे फीलिंग आ रही है कि इस रूम में कुछ लोग बैठे हैं, और अगर मैं थोड़ा सा और देखूंगी तो ये बस ये अगली लाइन के कुछ लोगों की हल्की सी फीलिंग आएंगी, और मैं बिल्कुल ऊपर देखूंगी एक ऐसी स्टेज में कि मेरा आपके इस रूम से ताल्लुक कटे, मुझे आप में से कोई नहीं देखेगा, बस ये होगा। अल्लाह की खातिर कोई काम करने वालों को दुनिया वालों से उम्मीद नहीं रहती, बेनियाजी आ जाएगी आपके अंदर, आप उनके लिए कर ही नहीं रहे, बल्कि वो आपकी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करें ना तब उलझन आती है, तुम्हारे लिए मैंने किया नहीं, तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो, तुम्हें तो मैंने खुश करना कोई नहीं था, तुम मेरी तारीफें क्यों कर रहे हो, और तुम्हें नाराज करना या तुम्हारी नाराजगी मेरे लिए इज़ नॉट अ बिग डील, तुम पता नहीं मुझे किस बात की धमकियां दे रहे हो कि मैं नाराज हो जाऊंगा। जब आप कोई काम अल्लाह की खातिर करते हैं ना, तो नफा या नुकसान आपको लोगों से नहीं अल्लाह से मतलूब होता है। जब अल्लाह के लिए किया जुआ है तो हो जाए नुकसान, सो बिस्मिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए किया था उसके लिए ठीक है ना, और किए कोई काम अल्लाह के लिए नफा हो जाए, हो गए वो खुश है, दुनिया ले परवाह ही नहीं। यानी आप कह लें कि दुनिया वालों की पसंद या नापसंद, खुशी या नाखुशी बहुत हल्की हो जाती है, और आप यकीन करें इसमें आपकी पूरी जिंदगी आती है। आगे जाके आप पढ़ेंगे इसमें डीलिंग्स मामलात, उसमें शायद ये बात ज्यादा खुलेगी, और ये चारों चीजें हर पूरा वक्त दोहराई जाती रहेंगी, पहला अभी पढ़ रहे हैं, अब जब दूसरा पढ़ेंगे तो ये पहली बातें दोबारा आएंगी, क्योंकि पहली बुनियादी अकीदा है। आप लोगों से कुछ भी मामला करें, जब आप अल्लाह के लिए करें तो फिर आपको उसकी फिक्र नहीं होती कि इसके नतायज क्या निकलेंगे। अल्लाह ने कहा ये काम नहीं करना, बरमला कह दीजिए नहीं करना, बस आपका कोई रिश्तेदार है आपको दावत में बुलाता है, क्या ये हमारे घर शादी की दावत है, खाइए खाना खाइए। अब आप देखिए लफ्ज शादी खुशी का नाम है ना, खुशी भी है मुबारकबादी भी है, और एक फितरी सी तलब है कि जब आप शादी से होकर आए तो खुश हों, ऐसे ही ना, रिलैक्स्ड हों, इंजॉय करें, मजा आया हो, आपकी इतनों को मिली, इतनों से मुलाकातें हुई, दुल्हन भी देखी, शादी भी खाई, खाना भी आज बड़ा अच्छा खाया, एक चेंज आ जाती है, अच्छे कपड़े भी पहने, लेकिन आप गए किसी जगह, वहां का माहौल ही नहीं आपको खुश करने वाला, दिल पे बोझ, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, वो सब कुछ देखकर आपको लग रहा है कि ये बातें मुझे तो खुश नहीं कर रही। अब क्या हुआ, आप बैठे रहे, मजबूर हैं, क्या करें। आप उस काम को अगर अल्लाह की खातिर करेंगे ना, तो आप क्या कहेंगे, अगर उस वक्त उठ गए तो उठ गए, या अगली दफा या कभी मौका है कोई आपको कहता है आपने मेरे घर आना है, दावत है, ये है वो है, आप उन्हें प्यार से कह दे, देखे मैं जो लेने गई थी ना वहां, मुझे वहां वो नहीं मिला, तो आप मुझे माफ करें, मैं नहीं आऊंगी। भाई आपको क्या, नहीं भाई ये चंद चीजें हैं जो मुझे बॉदर करती है, और मैं खुश होने गई थी, मैं खुश होने आई हूं, मैं कोई दुखी होने थोड़ी आई हूं, तो आपका मेरे बगैर गुजारा हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, आप जाइए अपने काम कीजिए, मुझे मजबूर ना करें। एक दफा सिर्फ अल्लाह की खातिर ये कहकर तो देखें, जो आप इसके अंदर ईमान खुशी पाएंगे ना, वो आपको उसमें कभी भी नहीं मिलेगी जो आप गूंगे शैतान बनकर बैठे होंगे। मैं इतना सोचती हूँ इस बात पे, लोग कैसे लोगों से मजबूर हो जाते हैं, जब लोग कहते हैं ना मियाँ की मजबूरी, बच्चों की मजबूरी, अच्छा पूछती हूँ तो मुझे अंदर से मैं खिलखिला के हंसती हूँ, मगर जब इसको खुद नहीं पता ये दौलत कितनी बड़ी है। हम हमेशा लोगों में तब उलझते हैं जब हमें इतनी बड़ी जात का यकीन नहीं होता। देखिए जो नबियों को ईमान मिला था ना, ये ऐसे ओवरनाइट नहीं मिल गया था, ये सारे स्टेप्स दूर करके मिलते हैं। और याद रखिए नसर मिनल ईमान, आपको अल्लाह जो मदद देता है ना वो आपके ईमान की बुनियाद पे मिलता है। आप नामुमकिन चीज का सौदा कर लें अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह असबाब पैदा करके रहेगा। क्यों हदीस में आता है कि कुछ लोग हैं जो अल्लाह पे कसम भी खा दें और अल्लाह ने वो काम नहीं था करना, लेकिन अल्लाह कहता है फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे ऊपर मान करके कसम खा ली है, कर दो। ये दर्जे ही मान के आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह किस तरह से ये सारी चीजें इंसान के लिए रास्ते खोलती हैं। मैं तो एक बात कहूंगी कि ईमान यानी ये काम, किसी काम को अल्लाह की खातिर करना, ये दुनिया की जन्नत है। जिस रब की जन्नत में जाके आपने खुशियां मनानी है ना इंशाल्लाह, जिस रब का दीदार वहां करके आप खुशियों वाली जिंदगी बसर करेंगे, वो आज अल्लाह की खातिर काम करके मिलती है आपको। आपको फिर इंशाल्लाह उसके अंदर यकीन मिलेगा। और फिर अल्लाह की खातिर कोई काम करे ना तो उसका एक और तोहफा भी होता है, इस्तकामत मिलती है। सारे उस रास्ते पर डटे रहें या सारे ही छोड़ दें? आप कहते हैं अच्छी बात है, बल्कि वैकेंसी खाली हुई, मैं ही बहुत हूं। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक इस वक्त मेरे जहन में है कि अल्लाह के नबी सल्लम के दुनिया से जाने के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि कुछ मामलों में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक तनहा ही रह गए। वो कोई इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन वो एक सोच का फर्क या एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल का डिफरेंस था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक तनहा खड़े हो गए कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में अगर कोई ज़कात देता था तो आज एक तिनका भी मैं माफ नहीं करूंगा। ये अल्लाह की खातिर खड़ा होना है। कदम जमते ही तब है जब आप अल्लाह की खातिर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एक पिलर है, अल्लाह की खातिर कोई काम करना। ये एक ऐसा बड़ा इंसान को अल्लाह ताला ने स्ट्रांग किस्म का फाउंडेशन दे दी है कि आप इसके बाद हिल नहीं सकते। फिर अकेले रह जाएं तो भी, लोग साथ हों तो भी, फर्क कोई नहीं पड़ता इतना। फिर इसी तरह आप देखिए, इसमें और चीजें ऐड हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे देखिए। दूसरी चीज, आखिरत में मुझे अल्लाह के हजूर पेश होना है और इसका कुर्ब हासिल करना। आप इसको ऊपर लिखें जरा अपने पेपर में और तसव्वुर में जरा खुद को पेश करें अल्लाह के सामने। बिलीव मी, जो कुछ मेरी छोटी बड़ी कोशिशें हैं अल्लाह को खुश करने की, क्या इस काबिल हैं कि अल्लाह को पेश कर सकूं? कभी लोग लेन देन में, अपनों में, खानदानों में, जब रस्मी लेन देन होता है ना थोड़ा बहुत, तो कोई ऐसी बेकार सी चीज पैक करके दे भी देना तो आखिर तक दिल धड़कता है। क्यों? जब खोलेगा तो देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या दे गया? कुछ लोगों के बारे में तो कहते हैं कि वो तोहफा देते हैं तो लिखते ही नहीं है कि हमने दिया है, बस खानापुरी को एक पकड़ा दिया लिफाफा कि खाली हाथ नहीं आए थे। लेकिन वो इस काबिल नहीं होता तोहफा कि खोले तो अगले को पता चले आपने दिया। क्या मेरी नेकियां, मेरी बातें, मेरे मुजाहदे, मेरी अल्लाह के लिए कोई काम करना, ये सब इस काबिल है कि अल्लाह इसको कबूल कर ले? और आप इमेजिनेशन में लाएं ना, आप खड़े हैं एक जगह, डरते डरते कांप रहे हैं, आप अपनी सारी जिंदगी की नमाजों का एक बड़ा सा बंडल बना के ले गए और एक नजर अल्लाह उधर उचटती डालते और कहता है ये नमाजें थी तुम्हारी, ले जाओ इसको, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हदीस में आता है, याद रखिए, कि जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, बास लोगों की नमाज का सिर्फ आधा हिस्सा कबूल होता है, यानी चार रखते हैं पढ़ते हैं ना, तो बस काट छांट के उसमें से दो अल्लाह रख लेता है, दो कहता है इसके मुंह पे मार दो। बास की नमाजों में से चौथा हिस्सा, यानी चार में से बस एक ही रकत, और बास में आठवां, और बास की तो पूरी की पूरी नमाज, हदीस के लफ्ज हैं, काले कपड़े में डालकर, काली बजंग पोटली बनाकर उसके मुंह पे मार दी जाती है कि रखो अपने पास। सरा इमेजिन करके देखे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को लोगों ने कहा कि हम देखते हैं कि जो ही नमाज का वक्त आता है तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, पीला पड़ जाता है, ये क्यों होता है? कहा तुमने सच पहचाना, हर नमाज से पहले ही मुझे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मैं एक बहुत बड़े बादशाह के दरबार में खड़ा होने वाला हूं। तो मुझे बताइए, वो नमाज जिसमें हमारा ध्यान भी अल्लाह की तरफ नहीं था, वो क्या अल्लाह का कुर्ब देगी? कौन सी आखिरी नमाज ने मेरे आंसू निकाले, कौन सी आखिरी नमाज में मैंने खुद को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा महसूस किया। इसी को हर चीज़ पे ले लीजिए, नमाज तो एक सिंबल है ना। हर अमल जो मैं और आप करेंगे, कोई दुनिया की ताकत मुझे आपको उस काम को आला दर्जे पे करने पे मजबूर नहीं कर सकती, सिवाय सोच के कि मैंने कल ये अल्लाह को पेश करना है। ये है ईमान बिल आखिरा। अब ये तीन चीज़ें हुई ना, नंबर एक अल्लाह की खातिर करना है, दूसरी बात अल्लाह के सामने पेश करना है, और तीसरी बात इन चीज़ों से कुर्ब लेना है। आप इसको एक ट्रायंगल में बनाकर अपने पास लिख लें, जैसे ऐसे तीन एक जैसे एज करेंगे ना बराबर, यानी तीनों की पूरी अहमियत है। एक लाइन जो ट्रायंगल की उसके ऊपर लिख लें अल्लाह की खातिर, दूसरे एज से तीसरे की तरफ जाइए तो लिखिए अल्लाह के हजूर पेश करना इसको, और नीचे वाली जो लाइन है उस पर लिख लीजिए उसका कुर्ब लेना। आप अपने हर अमल को इन तीनों में से देख लें। कुछ चीज़ें हो सकते अल्लाह की खातिर कर रहे हों लेकिन उसके सामने पेश करने से खौफ आने लगे, और पेश भी कर भी दी लेकिन कुर्ब कोई नहीं मिलता, तो ये आप खुद देखेंगे। इस दुनिया में आपका रिजल्ट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। जब मैं और आप कहते हैं ना आखिरत में जाके पता नहीं क्या होना है हमारे साथ, ये होगा वो होगा, पता नहीं अल्लाह ने हमें कहाँ भेजना है, देखते हैं वो हमारे साथ क्या करता है। जी नहीं, आपको इस दुनिया में पता है कि वो आपके साथ क्या करेगा। 19-20 का फर्क चल सकता है, 18-20 का भी चल सकता है, बंदे की मार्किंग और अल्लाह की मार्किंग में बड़ा फर्क है। वो रहीम बन जाए तो हमारे बड़े बड़े गुनाहों को पीछे डाल दे, और वो अगर हसीब बन जाए तो हमारी छोटी सी को पकड़ ले जो हमने कभी मेंशन ही नहीं की थी, ये तो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हम सबको दुनिया में पता लग जाएगा हम कहां जाने वाले हैं। अब ये तीन चीजें जब पुख्ता होती है ना, जिसको आप ईमान बिल आखिरा कहते हैं, तो इससे फिर इंसान के अंदर दो चीजें पैदा होती हैं। अब ये आपके लिए मेरे लिए एक क्राइटीरियन है कि मेरा ईमान बिल आखिरा किस दर्जे का है। कैसे पता चले? तो नंबर एक, एहसास जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी का एहसास बड़ा ज्यादा रखते हैं। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आप अपनी जान पे खेलकर उसको पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस जिम्मेदारी का मुझसे अल्लाह ने पूछना है। लोग क्या पूछेंगे आपसे? हंस के दिखा दें, गुस्से में दिखा दें, अकड़ के दिखा दें, एक अदा दिखा दें, अगला भी खामोश, आप भी खामोश, चले अल्लाह आपका भला करे, आइंदा ना करिए, क्या कोई करेगा? मैं खुद सोचती हूँ इंसान क्या कह सकते हैं, ना तो इंसान दे सकते हैं, ना इंसान कोई शाबाशी दे सकते हैं, और ना इंसान डांट सकते हैं। कोई मार सकता किसी को? पुलिस में डाल देगा कोई, कोई किसी को पकड़ के अदालत के कटहरे में खड़ा कर देगा। लेकिन यह एहसास है जिम्मेदारी कि मैं एक बहुत बड़ी जात की तरफ से ये नेमत दिया गया हूं, इसके ऊपर इंसान के हाथ कांप जाते हैं। वो शख्स जिसको पता हो कि मेरा तो हिसाब होगा, इसका एक खास रवैया होता है, और वो शख्स जिसका नजरिया ये हो कि मेरा कोई हिसाब लेने वाला नहीं, इसका रवैया और तरह का होगा। आखिरत के यकीन से इंसान के अंदर एक एहसास जिम्मेदारी का रवैया पैदा होगा, अकाउंटेबिलिटी। छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको, बस आप देखिए कि एहसास जिम्मेदारी कैसे है। आप और मैं इधर आके बैठे, हमसे ये तवक्को की गई कि हम इस टेबल को ख़राब नहीं करेंगे, हम इस कुर्सी के ऊपर इंक नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से उठेंगे तो अपने कुछ ख़राब मामलात नहीं छोड़ के जाएंगे। ये एक छोटी सी चीज़ हो गई। हो सकता है कोई कह लो इनको क्या पता चलना है, वो बैठ के कुर्सी को खुरचता रहे, टेबल पे कुछ लिखता जाए, उसको कह के नज़र तो नहीं पड़ी, कोई कैमरा तो नहीं है इधर, किसी एडमिन ने तो नहीं मुझे देखा, बच के निकल के भाग गए। और जिसको ये एहसास हुआ कि मैंने यहां अगर एक नुक्ता भी गलत लगा दिया, मैंने किसी की चीज को मिसयूज कर दिया, तो मेरा हिसाब ऊपर लिखा हुआ है। देखिए आप सब गवाह हैं इस बात के कि हम शुरू से एक एक लाइट जलाने पर भी गम रखते हैं। पानी की टैब खुली रह जाए, उसमें कतरा कतरा गिरे, वो कतरा कतरा ही स्कूल के पैसों का गटर में चला गया, ये हमसे हिसाब लिया जाएगा। ये हिसाब जो है ना, ये एहसास जिम्मेदारी ये बंदे को सीधा कर देता है। लोग कहते हैं अपना घर थोड़ी ये किराए का, मैं ऐसे अपने मुल्कों की बात कर रही हूं, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ रहते बैठ के, ओ खैर है जी किराए का घर है, तो भी किराए का घर है तो क्या मतलब, किराए पे लिए, तो मैंने कहा जब छोड़ेंगे तो वो आपसे पूछेंगे नहीं, और कौन पूछता है। तो भाई वो जो आपका उन्होंने एडवांस रखा हुआ है पास, तो वो नहीं ले लेंगे? कहते जब जाना होगा 2 महीने पहले किराए नहीं देंगे। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। और मैं कुछ लोगों के रहन सहन को देख के कहती थी, अल्लाह ऐसे किराएदार कभी दुनिया में किसी को ना देना। जालियां भी टूटी हुई हैं सर, भाई ये ठीक करा ले। क्यों कराएं, किराए का घर रहे आप, रहे नया घर उन्होंने आपको दिया और आप पुराना घर करके छोड़ रहे हैं। ये क्या है, इधर बेचारा क्या करेगा? अब आप देखिए ना, मालिक मकान ने कुछ एडवांस ले भी लिया था इस सोच से कि तोड़फोड़ होगी बाद में करेंगे, आप ज्यादा होशियार निकले, आप पूरा हिसाब करके वहां से रातों रात निकल के चले गए। अब जो चले गए क्या करेगा, पुलिस तो पर्चा काटती कोई नहीं है वहां, उसको फिर कुछ दे देंगे। अब क्या होगा, कल क्यामत के दिन पूछा जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि किसी की चीज इस्तेमाल करना वाकई एक पुल सर आता है। अपनी चीज टूट गई ठीक करा लेंगे, सही होगी करा लेंगे, किसी की चीज को आपने मिस यूज कर दिया। ये जो ट्रिप था ना, इसमें पीआईए पे बहुत सफर किया, यहां से भी पीआईए पे गए, फिर लाहौर कराची के ट्रिप्स थे, जो भी थे, मैंने दुनिया में किसी एयरलाइन को इतने दपाक से और मिन्नत के अंदाज से बार बार अनाउंस करते नहीं सुना जो हमारी पीआईए बेचारी करती है। ये जहाज आपका कौमी असास है, ये हमारे मुल्क की चीजें हैं, तो जहाज की सीटों को नुकसान ना दीजिएगा और बाथरूमों में चमचे ना फेंकिएगा। वो वीडियो दिखाते हैं लॉन्ग ट्रेवल्स में, 2 दफा से ज्यादा शायद उन्होंने दिखाई, यानी अब वो बेचारे बार 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 अनाउंस करते हैं कि आप जहाज को नुकसान ना दें, और वो तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी ये लास्ट फ्लाइट जो थी, इसमें मैंने अपने कानों से सुना कि लोग खड़े हैं, तो कहा उस वॉशरूम में ना जाओ, क्यों क्या हो गया? तो किसी ने कहा कि अंदर पैंपर किसी ने फंसाया हुआ है वॉशरूम में, और दूसरे लोग उधर दूसरी तरफ जा रहे हैं, और वो उनकी जो एयर होस्टेस हैं और जो भी लोग थे बाद में वो अपने कर करा के बेचारे मेहनत तो उसको निकाल रहे थे। ये एहसास जिम्मेदारी नहीं है। मैं सोचती थी कि बेचारे और क्या करें, जो हमारे लोग चीजों का हाल कर देते हैं क्या होगा। कुर्सियों पे आप देखें, जब आप जहाज में बैठते हैं आप जाके अंदर देखेंगे, आपको वो वहां जाके चीजें दिखेंगी, आप सोच में पड़ जाते हैं कि हम जहाज में बैठे हैं कि बस में बैठे हैं। और जब वो दिखाते हैं कि फ्लश में से चमचे निकल रहे हैं, पैंपर्स निकल रहे हैं, तो वो कहते हैं लोग डालते हैं तो निकलते हैं ना, उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, दिखाते हैं आपको बार बार कि ये डालने से ये खराब हो जाएगा, ये डालेंगे ऐसे नहीं होगा। तो ये जहाज आपकी अमानत है या अपने मुल्क की है, तो इसको नुकसान ना दें। इस कारण तक कि कौम जाहिल है, अनपढ़ कौम है, उनको परवाह नहीं है। और फिर आप देखिए कि जो खाना आता है, जो बचता है, मैं वही कह सकती हूँ कि आप एहसास के साथ खुश नहीं रह सकते। खुश आप तब है जब आप अपने घर में अपनी जाती जिंदगी में आपने चीज रखी खराब नहीं हुई, आपने उठाई रखी। आप दुनिया में 4 लोगों के साथ खाना खाने जाएं, लोगों को खाना जाया करते देख के रोते हैं। आप बाहर घूमने गए, लोगों को फ्लोर पे कचरा डालते देखकर, यानी ईमान के साथ आप खुश नहीं रह सकते बाहर की दुनिया में, अगर बाहर का माहौल अच्छा ना हो। इस वक्त हमारी उम्मत को जितना ज्यादा ईमान बिल आखिरा पे यकीन दिलाने की जरूरत है, इतनी शायद किसी और चीज की नहीं। मत कहिए लोगों को चोरियां ना करें, डुआके ना डालें और गंदगी ना डालें, आप उनको सिर्फ ये दिखा दें कि फमैया मल मिसकाल जर्रत खैरिन जरा और शर्रिन जरा। दूसरे लोग चाय का एक कतरा नीचे गिर जाए ना तो टिश्यू से साफ करके उधर रख के फिर बैठते हैं, हम खाना खाकर कुर्सियों से हाथ साफ करते हैं। एहसास नहीं है। और मैं कहती हूँ कि बाज लोग तो बदला लेते हैं कि आप कम से वास्ता पड़ गए, अब आपको ना को चने चुबाएंगे, कभी आप भी फिर याद ही करेंगे कि आपसे वास्ता पड़ा था। ये हाल है, ये जाहिल कौम की अलामत होती है। तो एहसास जिम्मेदारी बंदे को सीधा रख देता है। कितना सहाबा का आप पढ़ते हैं सुनते हैं, वो छोटी छोटी चीजों पे थे। हजरत अबू उमर फारूक को जब उनको खिलाफत दी गई तो लोगों ने कहा कि उमर के मिजाज में बड़ी सख्ती है, तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा था कि खिलाफत का ये बोझ उमर को नरम कर देगा। और जिम्मेदारी थी ना, तो रातों को अपने कमर के ऊपर आटे की बोरियां ले लेकर जाकर गरीब औरतों, यतीम औरतों और बेवाओं के घरों में देते थे। और ये जिम्मेदारी का एहसास था कि कहते थे कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा हो गया तो उमर तुमसे पूछा जाएगा। और ये एहसास जिम्मेदारी थी कि एक रात के गश्त में देखा किसी घर से औरत के तकराहने की आवाजें आ रही हैं, पता चला कि वो डिलीवरी की पेन में है। घर गए, अपनी बीवी को लिया, आप देखिए खलीफा की बीवी फर्स्ट लेडी होगी ना, उसको कहा जा इसकी मदद कर और बच्चे को पैदा करने में मदद की। ये एहसास जिम्मेदारी थी। आज आप देखिए आपका मुल्क लूट के खा जाएं, डुबो दें, आपको वो बेच के आ जाएं पूरी दुनिया में, कहते हैं कौन हमें पकड़ेगा। ऊपर से सियासत से लेकर, यानी आप कहे कि हुक्मरानों से लेकर सड़कें साफ करने वाले हमारे लोग सीधे हो जाएं अगर ईमान बिलाखिरा सीधा हो जाए। और ये खबर नहीं है, खबर की हद तक तो हम सबको पता, अल्लाह पकड़ेगा, अल्लाह पूछेगा, ये यकीन है। और जिस दिन मुझे ये यकीन आ गया, मेरे काम में वो क्वालिटी आएगी, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती चाहे मेरी मौत आ जाए, क्योंकि ये मेरे जिम्मे है ये चीज। कभी माँ अपने बच्चे से गाफिल हुई है, छोड़ के उसको चली जाए खुद कहीं, वो कहती है ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी, मैंने इसका हाथ पकड़ के सड़क ना पार कराई तो ये तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों से हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो आज हमारे इर्द गिर्द एक अजीब सा क्योस है ना, बेतरतीबे और कह लीजिए बेढंगे, और किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। आप एक काम करके उठते हैं, घंटा लगा के हो गया, अगले दिन मैसेज आ जाता कुछ भी नहीं हुआ, वो ये हो गया था, वो हो गया था। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आप देखिए अल्लाह की सुन्नत देखे, मैंने शुरू में जो जुमले बोले हैं ना, आपने अपने बच्चों को ठीक करना है, अपने मर्दों को ठीक करना है, अपनी बीवियों को ठीक करना है, यही तरतीब रखे। आज से आप अपने बच्चों को ये ना कहें कार्टून ना देखो, आप ये ना कहें उनको के गंदी चीजें ना देखो, फिल्में ना देखो, आप उनको ये एहसास दिला दो बेटा जो यहां देखा है ये वहां भी देखना पड़ेगा, जो इसका इफेक्ट है वो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी लगा रहेगा। बस लोगों को अल्लाह के सामने खड़ा कर दें, वो है मुहासिब, लिख के लगा दें जगह जगह, अल्लाह मुहासिब है। आपकी जिम्मेदारियां आप नहीं पूरी करेंगे फिर अल्लाह जाने, आप जाने आपको किसने दी है, अल्लाह ने दी है। और याद रखिए जब अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियों को बंदा रिलैक्स्ड फील करता है ना, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना, अल्लाह वो नेमत छीन लेता है। ना शुक्री और ना कदरी का यही नतीजा होता है। आपने देखा होगा हमारे मुल्कों में, यकीन करें आपने गाड़ी में सफर तो किया ही होगा ना, माशाल्लाह जब जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, कैसी खूबसूरत जमीन है हमारे मुल्क की, सरसब्ज, फिर दरिया देखें, सिर्फ पंजाब में 5 दरिया हैं, ये पूरे दुनिया में ऐसे नहीं होते। मैं सोचती हूँ कि आज भी जब आप लोगों में रहते हैं, जो इलाके जहां लोग हैं, तो वो आप उलझे हुए डिसऑर्गेनाइज्ड, ट्रैफिक का शोर, लेकिन आप जरा से खुले इलाकों में निकलें तो आपको लगता है हमारा मुल्क जन्नत है। क्यों? क्योंकि वहां कायनात है, वहां फितरत के साथ हैं लोग। हम इंसानों ने खराबियां पैदा की हैं, आज हम इंसान सीधे हो जाएं, हमारा मुल्क कहना चाहिए कि सोने की चिड़िया। तो इसके लिए मुझे और आपको सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को संभलना होगा। तो पहली चीज क्या हुई कि आपका अकीदा आखिरत पुख्ता हुआ तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, एक और भी चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी पे, बंदा क्या कहता है, फिर मैं लेता ही नहीं, मैं जिम्मेदारी निभा नहीं सकता, मैं नहीं लेता। ये इससे भी बड़ा जुर्म है। बस आप देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको जिम्मेदारी बादशाह ने नहीं दी थी, ख्वाब के थ्रू वो समझ गए थे कि इस मुल्क पे सख्ती आने वाली है, ड्राउट आएगा, कहत होगा, इनसे अपनी इकोनॉमिक्स नहीं चलेगी। हजरत यूसुफ ने क्या कहा, इन्नी हफीजुन अमीन, उन्होंने खुद ही ओहदा मांग लिया कि मुझे वजीर खजाना बना दो, क्यों कि मैं तुम्हारे माल को, तुम्हारे एसेट्स को सही तरह मैनेज करूंगा। तो क्या पता चला कि जब आपको पता है कि ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, या आप जैसा भी कोई नहीं कर सकता, और आप ये सोचते हैं कि जी मैं तो ये जिम्मेदारी नहीं लेता, तो ये उससे बड़ी जिम्मेदारी है। हजरत यूसुफ ना लेते उस वक्त ये जिम्मेदारी, उनको किसी ने रोका था, लेकिन जब आपको पता है कि आप कोई काम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, तो फिर आप उस काम को नहीं लेते। बस आप माँ है ना, घर में खाना आप पकाती हैं, आप कह दें पता नहीं मेरा खाना पकाने में हाथ जल जाए, पता नहीं खाना पकाऊं ठीक ना हो, भाई आज अपने मियाँ को कह दें कल से मैंने खाना नहीं पकाना, भी कौन पकाएगा, मियाँ तो नहीं पकाएंगे, वो घर पे नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं। नतीजा क्या निकलेगा, जो पका रही थी आप वो भी नहीं पका, और घर में क्योस आएगा, बूढ़ी सास उठ के पकाएंगी मिसाल है, या घर के कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं घर में आके वो चाय बनाएंगे, क्योस होगा ना। तो आपका उस वक्त ये हैंड्स अप कर देना, ये इससे बड़ा जुर्म है। तो इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, पहली क्या थी बोले, ईमान बिल आखिरा के बाद एहसास जिम्मेदारी पैदा हुई।